Siddhi Om Namah Siddhi Om Namah Siddhi Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Siddhadadattamala Visuddha buddhi elatta sauvatta Tihuvana sirase haraya Pasiyantu bhadaraya sauve Tihuvana bhavana pasariya Pachakhava boha kirana parivedo Uyo vyanathavano Arahanta divayaro jayau Tirayana bhagani haye Nuttariya moha senna sirani vaho Ayari ara upasivau Parivaliya bhaviya jiyalo Annana andayare Anora pare bhavanta bhaviyanam Ujjo jekau Pasiyantu saya uvachhaya Duha tivvati sa vinadiya Tivvana bhaviyana sutturayena Parithaviya dhamma pava Suvajalvana payanena Sandariya silahara Uttariya chirapamada dussilabhara Sahu jayantu sauve Sivasuha paha santhiyahu nikvaliyabhaya
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता हैं पुष्पदंत और भूतबली आचार्य जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यह जो नवमी पुस्तक चतुर्थ खंड उसमें कृति अनुयोग द्वार की बात चल रही है। हम पृष्ठ संख्या 22 पर आ गए। पहला सूत्र नमो जिनानम और दूसरा था नमो ओहि जिनानम। नमो ओहि जिनानम यानी अवधि जिन को नमस्कार, उसकी बात यहाँ चल रही है। उसमें से जघन्य अवधि की बात, जघन्य अवधि ज्ञान की बात यहाँ उस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। अवधि का अर्थ हमने देखा था मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित जानते हैं। तो ये अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद होते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो जघन्य अवधि ज्ञान है उसका द्रव्य जब हम कहना है तो कितने परमाणुओं के स्कंद, यानी छोटे में छोटे कौन से स्कंद को जानते हैं, उस स्कंद में कितने परमाणु होते हैं, उसकी बात यहाँ कहते हैं। जितने छोटे में छोटे को जानेंगे उससे बड़े तो जान ही सकते हैं, उससे छोटे वाले को नहीं जानेंगे। जब अगला भेद होगा अवधि ज्ञान का, उसमें उससे भी छोटे स्कंद को जानेंगे और पावरफुल हो जाएगा तो उससे भी छोटे छोटे स्कंदों को जानते जाएंगे। तो वो द्रव्य अपेक्षा भेद, क्षेत्र अपेक्षा भेद, उसकी चर्चा भी आने वाली है सारी। क्षेत्र में कितने क्षेत्र तक का ज्ञान है उसको क्षेत्र कहते हैं। काल यानी भूतकाल और भविष्य काल, क्या एक घंटे तक का जानते हैं, क्या कुछ बहुत सारा 100 साल तक के जानते हैं, या कुछ सागर तक का जानते हैं, या पल्ले तक का जो कुछ है, तो उसको सागर तक का नहीं होगा, पल्ले का कुछ होता है तो उसको कहते हैं उसका काल। और भाव में वो कितने पर्याय उनको या कितने क्या जानता है उसकी बात अभी आएगी। भाव में द्रव्य की पुद्गल परमाणुओं की या पुद्गल स्कंदों की पर्यायों को लेना है, भाव कितना है क्या है उसको लेना। अब यहाँ हम 22 पृष्ठ पर आए हैं। अभी उसमें कल हमने देखा था अवगाहना के भेद देखे थे। अवगाहना का वेद का विषय क्यों निकला? क्योंकि यहाँ अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताते समय बताया था कि जघन्य में जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र को जानते हैं, तो कम से कम क्षेत्र की बात वहाँ उठाई थी। जघन्य अवधि ज्ञान की बात है ना, तो उसका मिनिमम से मिनिमम क्षेत्र कितना होता है, तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव की जो अवगाहना है उतने क्षेत्र को जानते हैं, वहाँ उतने क्षेत्र तक के उसमें स्थित जो उद्गल है, स्कंद है, परमाणु को अलग नहीं जानेंगे, स्कंदों को जानेंगे परंतु पुद्गल को जानेंगे, ये बात वहां उठी थी, इसलिए उसकी सारी हमने चर्चा की थी। अब उसके बाद अभी हम यहां पर आए 22 पृष्ठ पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना मात्र, यह सब ही जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र, अवधि ज्ञानी जीव और उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले द्रव्य का अंतर है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। देखो इसका थोड़ा सा पढ़ते समय थोड़ा डिफरेंट करके मैं पढ़ती हूँ। सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना मात्र, यह सब जो बताया ना अभी हमने, सूक्ष्म निगोद उसकी जघन्य जो उसकी जो अवगाहना है, जघन्य अवगाहना, उतना जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है और अवधि ज्ञानी जीव द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जो द्रव्य है ये उसका अंतर है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। फिर से, अवधि ज्ञान का क्षेत्र और अवधि ज्ञान का द्रव्य, द्रव्य ने वो कौन से छोटे में छोटे कौन से कितनी स्कंद क्वांटिटी ने अवगाहना, स्कंद की अवगाहना, कितने बड़े स्कंद को जानता है, उसका अंतर बताने वाला ये सूत्र, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। हाँ, वो मान लेते हैं कि कितने क्षेत्र को जानते हैं और कौन से कितने छोटे स्कंद को जानते हैं, तो ये द्रव्य इतने द्रव्य को जानते हैं, छोटे में छोटे इतने स्कंद को जानते हैं और इतने क्षेत्र तक जानते हैं, तो ये इसमें से डिफरेंस है, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं। तो उसको कहते हैं कि ऐसा घटित नहीं होता, ऐसा घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने से सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य अवगाहना से जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र के असंख्यात गुणे होने का प्रसंग आवेगा। यदि ऐसा मानेंगे कि ये दोनों में अंतर है, तो ये जितना स्कंद को जानते हैं उससे इस सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहना है यानी क्षेत्र है वो असंख्यात गुना होने का प्रसंग आएगा, परंतु ऐसा है नहीं, तो उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। संख्या ए शंका, असंख्यात गुणा कैसे होगा? तो उसको कहते हैं क्योंकि जघन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र के विस्तार और उच्छेद से आयाम को गुणा करने पर उससे असंख्यात गुणत्व सिद्ध होता है। अभी जब अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है अभी हमने देखा था, तो उसको उच्छेद विस्तार और आयाम यानी तीन डायमेंशंस, जिसको हम कहते हैं विड्थ कितनी है उसकी, यानी चौड़ाई कितनी है, यानी तीन डायमेंशंस, लंबाई रुंधी उसकी और हाइट, उच्छेद हाइट को कहते हैं, विस्तार यानी चौड़ाई और आयाम यानी लंबाई। तो किसी का क्षेत्रफल निकालना है, घन क्षेत्रफल, तो तीनों ही डायमेंशंस जो है, तीन बाजू जो होती है, भुजा या कोटि भी कहते हैं उसको, तो उनका आपस में गुणा करने पर वो संख्या आती है। देखो क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा, पहले उन्होंने क्या दिखा था, ऊपर हम पढ़ते हैं, पहले में हमने क्या देखा था, ये तो अवगाहना के भेद देखे थे ना हमने, तो वो कितनी होती है वो तो बताया, उससे इसका कुछ लेना नहीं, अभी हमने जहाँ से पढ़ा है वहीं से लेना है। तो कोई कोई आचार्य क्या मानते हैं कि जघन्य अवधि ज्ञान का जो द्रव्य है, द्रव्य यानी
क्षेत्र, कहाँ
क्षेत्र, कितने क्षेत्र तक जानता है, तो सूक्ष्म निबोध लब्धि अपर्याप्त तक की जो अवगाहना है उतने क्षेत्र तक को ही जानते हैं, वही जगन्य क्षेत्र है।
ये दोनों में फेक
है, ऐसा है ना। देखो यहाँ कोई आचार्य क्या कहते हैं उसकी बात चल रही है। देखो 16 पेज निकालना। देखो नीचे से जो शंका समाधान है उसके ऊपर देशावधि ज्ञान के जगन्य क्षेत्र की प्ररूपणा की जाती है, मिला पेज नंबर 16 में। वहाँ हमने द्रव्य से कितना जगन्य द्रव्य को जानता है वो देख लिया। अभी क्षेत्र की बात करेंगे, फिर काल की और भाव की करेंगे। अब क्षेत्र की बता रहे 16 पेज पर, जगन्य में जगन्य कितने क्षेत्र तक को जानता है, यानी अभी जगन्य में जगन्य यानी यहाँ उल्टा लेना। द्रव्य में हम क्या देखते थे, छोटे में छोटे कौन से स्कंद को जानता। अब जघन्य क्षेत्र की जब बात करेंगे तो अधिक से अधिक कहाँ तक जानता है,
अधिक क्षेत्र को जाने वो अच्छा और
यानी अभी जघन्य अवधि ज्ञान है, जघन्य अवधि ज्ञान की लिमिट कितने तक है, उसकी मर्यादा हम कहेंगे 1 स्क्वायर फुट तक है, उसके बाहर का वो नहीं जान सकता। तो ये 1 स्क्वायर फुट उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 स्क्वायर फुट जघन्य अवधि ज्ञान की 1 स्क्वायर फुट तक जो जानता है वो 1 इंच वाला भी जानेगा ही, उतने क्षेत्र में स्थित पुद्गलों के संबंध में वो जानेगा। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है क्षेत्र में,
1 स्क्वायर फुट। उसकी बात आई माने क्यों ध्यान,
ये स्क्वायर फुट नहीं हुआ, ये कितना है क्षेत्र में, 1 स्क्वायर फुट तो उदाहरण के तौर पर बताए। तो उस कितने क्षेत्र तक मैक्सिमम जान सकता है जगन्य अवधि वाला, तो कहते सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की जो अवगाहना है उतने क्षेत्र तक ही वो जानेगा, उससे बाहर के क्षेत्र को नहीं जानेगा। ये उसकी जगन्य क्षेत्र की यानी जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, फिर और उसके पावरफुल अवधि ज्ञान है तो ये क्षेत्र बढ़ेगा।
देखिए अभी हमने यहाँ अवधि ज्ञान के क्षेत्र की बात हम देख रहे हैं, तो मिनिमम क्षेत्र जो होगा वह कम से कम मतलब अवधि ज्ञान का जो मिनिमम अवधि ज्ञान जानने की जो कैपेसिटी क्षेत्र की अपेक्षा से, तो अभी हमने इतनी जो अवगाहनाएं देखी है अनेक जीवों की तो उसमें सबसे कम अवगाहना किसकी देखी थी, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त जीव जो है निगोद का, तो उसकी मिनिमम मोस्ट है। तो उतना क्षेत्र जो जाने हाँ तो उसका मिनिमम अवधि ज्ञान का पावर है
उससे अभी क्या।
वो परमाणु का तो एकदम बहुत आगे है, अभी बीच में बहुत सारे भेद हैं।
अभी एक उसके आसन के अध्यक्ष
है, उससे छोटे स्कंद को जानता है उसका ज्ञान पावर को लेके कम पावर।
देखो आप स्कंद को ले रहे हैं, द्रव्य अलग है और क्षेत्र अलग है, आप फिर उससे छोटा स्कंद को जानते कि नहीं ये बात उठा रहे, वो नहीं बात यहाँ। अच्छा वो तो हो चुका, द्रव्य की बात हो चुकी, द्रव्य की बात हमने देखी थी कितने द्रव्य को जानता है, तो इतने इतने विश्वसोपचय सहित जो अवतारिक शरीर है उसको घनलोक से भाग दो तो एक खंड कितना होगा, उतने जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अभी वो ये मान लेते यहाँ हमने लिखा ये ए वाला जो लिखा है ये स्कंद है, छोटे में छोटे कौन से स्कंद को जानता है इतने, इससे छोटे स्कंद को नहीं जानेगा, ये जगन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य बताता है।
द्रव्य में रिवर्स पोजीशन,
द्रव्य में रिवर्स है, सूक्ष्म में सूक्ष्म कौन सा स्कंद जानेगा तो इतना। अब यहाँ हम बता रहे हैं वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की जो अवगाहना है वो क्षेत्र बता रहे, अधिक से अधिक कितने क्षेत्र को जानेगा या कम से कम कौन से स्कंद को जानेगा बताए। यहाँ क्षेत्र में अधिक से अधिक कहाँ तक जानेगा,
ये जो जितना लब्धि पर्याप्त का क्षेत्र है उतना उसका उत्कृष्ट और द्रव्य जानेगा,
इतना मिनिमम है।
नहीं वो द्रव्य की बात यहाँ नहीं है,
मिनिमम क्षेत्र
यहाँ द्रव्य नहीं, ये क्षेत्र का ही लेना अकेला।
ये जो जगन्य क्षेत्र उसका आपने देखा कि और विश्वसोपचय जो
नहीं वो द्रव्य देखा, विश्वसोपचय वाला द्रव्य देखा
जगन्य द्रव्य,
हाँ जगन्य जगन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य, जगन्य द्रव्य भी नहीं, हाँ उससे छोटा वाला नहीं जानेगा।
अभी यहाँ जो लब्धि अपर्याप्त की बात है, विभव लब्धि क्षेत्र की बात,
क्षेत्र के लिए कितने क्षेत्र तक
जाने, क्षेत्र
क्षेत्र एक कंस है। अभी इसमें द्रव्य की बात नहीं, यहाँ स्कंद कितने स्कंद को जानता है वो नहीं लेना यहाँ। अभी यहाँ जो बताया ना बी लिखा है, बी वाला राउंड मैंने बड़ा निकाला और ए वाला छोटा है, तो ये ए वाला है वो द्रव्य बताता है कितने छोटे छोटे स्कंद को जानते, तो इतने, ए से छोटा स्कंद होगा तो नहीं जानेगा, परंतु ए को जानता है तो ये ए जो है वो बी जितने क्षेत्र में स्थित वाले इन स्कंदों को जानेगा। अभी कोई स्कंद ए से बड़ा है, बी जितना भी बड़ा है तो भी जानेगा उसको, उससे कोई निषेध नहीं है, बड़े स्कंदों को जानने का कोई निषेध नहीं है। कि कहाँ तक के क्षेत्र को जानता है तो इतने लिमिट में जाने।
शंका में क्या पूछ रहे हैं?
हाँ अभी शंका
एक मिनट, हाँ ये जो आपने बताया वो जो साइज है वो हाँ। तो सूक्ष्म निगोदी और लब्धि अपर्याप्त
नहीं, नहीं बी है वो
सूक्ष्म,
ए है वो औदारिक शरीर के परमाणु को विशेष उपचय वाले उसको घनलोक से भाग दिया था, वो जो स्कंद आया था छोटे में छोटा स्कंद कहाँ तक जानता है उसकी उसकी होगा नहीं, उसका साइज बताया।
अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जो जीव है ना,
हाँ,
उसका उसकी अवगणना इससे बड़ी है,
हाँ इससे बड़ी उसकी अवगणना इससे बड़ी।
अच्छा और जो हम जिसको डिस्टेंस कहते हैं माने उदाहरण के,
हाँ,
उसकी बात तो यहाँ आई ही नहीं, माने जिसे वो देवलोक का जो है वो अपन
वो आएगी अभी
जानता है,
वो तो अभी ये जघन्य अवधि वाला उतना नहीं जानता, ये तो जघन्य में जघन्य देशावधि वाला कितना जानता है।
जैसे ज्ञान का उघर कम से कम कितना होगा लब्धेक्षर जितना, और अधिक से अधिक कितना होगा केवल ज्ञान जितना, बीच वाली जो बात आएगी ऐसे यहाँ अभी मिनिमम की बात चल रही है,
ये मिनिमम की बात चल रही है, उत्कृष्ट फिर बताएंगे।
जिसे उसमें डिस्टेंस एकदम दिखता है
ये छोटा,
उत्कृष्ट उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कहाँ तक जानेगा, पूरा लोक को जानेगा। अब बीच वाले बहुत सारे विकल्प होंगे,
है यहाँ पे क्षेत्र के अपेक्षा जो छोटा में छोटा क्षेत्र को जान रहा है वो इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, वो प्रत्यक्ष जान रहा है।
यहाँ इंद्रिय की बात ही नहीं है, यहाँ अवधि ज्ञान की ही बात चल रही है। अभी यहाँ मति शुद्ध ज्ञान की बात नहीं है, मति ज्ञान की बात नहीं चल रही है, अवधि ज्ञान की बात चल रही है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। अभी यहाँ इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं, भले इंद्रिय से आप 25 फुट का देख रहे हैं, परंतु अवधि ज्ञान से आप उन इंद्रिय गम्य चीजों को ही जान रहे ऐसी बात नहीं है। अवधि ज्ञान से क्या जाने जाते हैं, उसमें जो कुछ सूक्ष्म भी स्कंदों को जानेंगे, स्थूल को जानेंगे, वो कुछ नई बात नहीं है। और अवधि में मर्यादा भी होती है, इंद्रिय में तो सामने जो है उसको आप वर्तमान को जान रहे, अवधि ज्ञान में तो उसकी भूत भविष्य की पर्याय भी ख्याल में आएगी, विशिष्ट लिमिट तक, उसमें भी काल की लिमिट अभी बताएंगे। ये तो जघन्य की बात चल रही है, अभी आगे वाले जो भेद है उसका क्षेत्र भी बढ़ते जाएगा, जैसे कोई पूरे भरत क्षेत्र तक के क्षेत्र को जानेगा तब उसके वो स्कंद भी बड़े हो गए, उसका काल भी बढ़ेगा, जैसे 15 दिन तक कितना काल हो जाएगा उसका आगे पीछे का, ख्याल है ना, उसकी चर्चा भी आने वाली है। ये तो जगन्य में अभी चल रहा है अपना, इतने क्षेत्र तक के स्कंदों को जानेगा। अब प्रश्न क्या पूछा था?
एक यहाँ जो 16 नंबर के पृष्ठ पर लिखा है,
हाँ,
सूक्ष्म निगोद जीव की जितनी अवगाहना होती है उतना क्षेत्र की अपेक्षा से जगन्य होगी, तो वो जो अवगाहना उसकी जो हमने देखी, तो वो अवगाहना में उसकी मतलब शरीर के तो ये होंगे ना, मतलब परमाणु औदारिक शरीर के,
हमें क्षेत्र नापना है, हाँ, हमें क्षेत्र नापना है।
तो द्रव्य में हम कैसा ले रहे हैं?
द्रव्य में हमने वो छोटा स्कंद लिया था, ये निगोद को जानता है कि नहीं जानता उसकी बात नहीं चल रही है, बराबर है ना। अभी ऐसे हमने आपको ये बुक का एग्जाम्पल दिया, ये बुक कितने बाय कितने की है मान लेते हैं, अभी 8 इंच बाय 10 इंच है जो कुछ है, इतने क्षेत्र तक को जानेगा जब कहेंगे वो तो क्षेत्र हुआ। अब उसमें ये चौक जितना है इसमें से सूक्ष्म में सूक्ष्म कितना जानता है तो इतने तक को जानता है, ये द्रव्य हुआ। उससे छोटा स्कंद को नहीं जानेगा, परंतु कितने क्षेत्र तक वो फैले है तो जानेगा, तो इतने क्षेत्र तक। इसमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है सर, शायद मैं बताने
बॉडी में फैले हुए हैं जो अभी ये मिनिमम प्रकार होता है जो
तो आत्म प्रदेशों से बाहर का ले लेना ना,
सभी सभी आत्म
प्रदेश हाँ उतने क्षेत्र तक के अवधि को जाने उसमें जानेगा वो। तो ये प्रश्न जो 22 पृष्ठ पर पूछा था, ये असंख्यात गुणा कैसे होगा, बाईस नंबर देखो फिर से स्टार्टिंग जहां से किया ना वहां से फिर पढ़ते। सूक्ष्म निगो जीव की जघन्य अवगाहना मात्र, यह सभी जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र। यहां तक तो समझ में आया, यानी जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, सूक्ष्म निगो लब्ध पर्याप्त की अवगाहना जितना है। और फिर अवधि ज्ञानी जीव के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला द्रव्य, यानी छोटे में छोटा स्कंद, ये दो बातें भी हमने ए और बी दो राउंड यहाँ निकाले, तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ बता रहे हैं। ऐसे कितने ही आचार्य कहते हैं परंतु वो घटित नहीं होता। आगे बढ़ेंगे देखो, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं परंतु यह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने से सूक्ष्म निगो जीव की जघन्य अवगाहना से जघन्य अवधि ज्ञान क्षेत्र के असंख्यात गुणे होने का प्रसंग आवेगा। यदि ऐसा मानेंगे तो जघन्य अवधि ज्ञान क्षेत्र वो जघन्य जो सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहन है जघन्य, उससे असंख्यात गुणा हो जाएगा। तो शंकाकार को ये समझ में नहीं आया असंख्यात गुणा कैसे होगा, तो ये पूछ रहा है असंख्यात गुणा कैसे होगा, तो उसके जवाब में बताते हैं, क्योंकि जघन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र के विस्तार और उच्छेद से आयाम को गुणा करने पर उससे असंख्यात गुणत्व सिद्ध हो जाता है। जब हम अवधि ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं तो क्षेत्र में तीन डायमेंशंस है, उसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा। अब उसके लिए कहते हैं, और असंख्यात गुणत्व संभव है नहीं, क्योंकि जितनी सूक्ष्म निगो जीव की जघन्य उगाहना है उतना ही जघन्य अवधि का क्षेत्र है, ऐसा कहने वाले गाथा सूत्र के साथ विरोध होगा। देखो क्या कहते हैं, ये जघन्य अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, वो जघन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य की जो अवगाहना है स्कंद का साइज, उससे ये असंख्यात गुणा है। यहां तो अभी नहीं आया था लिख के, परंतु वो बात आएगी, क्योंकि देखो जघन्य अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो जघन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य की अवगाहना से असंख्यात गुणा है। फिर भी द्रव्य कितना है हमने देखा था, घनांगुल के असंख्यात भाग है, ये घनांगुल का असंख्यात भाग देखा था हमने, द्रव्य का साइज देखा। देखो ये यहाँ पेज नंबर 530 है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, ये पूरा ही विषय बहुत जटिल सा लगता है, इसलिए बार बार मैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका का आधार लेके समझाने वाली हूँ, क्योंकि वहां तो विषय पूरा ही विस्तार से समझाया है और यहाँ जितना हमें लगता है विषय वो उसमें से हम ले लेंगे। देखो 530 पेज पर ऊपर से तीसरी लाइन, जो पूर्वे जघन्य अवधि ज्ञान संबंधी द्रव्य कहता, अभी हमने देखा था ना औदारिक शरीर वगैरह वगैरह वो सारा झमेला याद करना, तिसकी अवगाहना का प्रमाण, वहां तो परमाणु कितने उसको बताया था, परंतु उस स्कंद का साइज भी जो कुछ होगा तो उस स्कंद के साइज को यहाँ अवगाहना कहा, किसके द्रव्य की अवगाहना वाला, जघन्य अवधि के द्रव्य की अवगाहना कहा, ये निगोद की बात यहाँ नहीं है। तो इस जघन्य अवधि का क्षेत्र का प्रमाण के असंख्यात भाग मात्र है, ये हमने जो ए ना है एक ही अवगाहना, बी के असंख्यातवे भाग है, यानी क्षेत्र के असंख्यातवे भाग है। कितने सूक्ष्म स्कंद तक को जान सकता है? तो जो सूक्ष्म निबोध लब्धि अपर्याप्त तक की अवगाहना है उसके असंख्यातवे भाग तक अवगाहना वाले स्कंदों को यानी द्रव्य को जानता है। क्या है ना? और वाक्य यानी उसके भुज कोटि और वेद, अभी हमने उच्छेद देखा, आयाम और विस्तार, उसके बदले हम भुज कोटि और वेद कहा एक ही बार। उसका प्रमाण सुचंगुल के असंख्यात विभाग मात्र है। अब क्या कहते हैं, इसको भी हमने घनांगुल का असंख्यात भाग देखा, बी बी को, अभी हम बार बार वो निगोद की अवगाहना नहीं कहेंगे। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्ति अवगाहना के लिए हमने बी लिखा, और सूक्ष्म सूक्ष्म कौन से कितने स्कंद के तक जानता है उसको हमने ए कहा। तो ये भी घनांगुल का असंख्यात भाग है, कल हमने अवगाहना के भेदों में देखा। और जो ए वाला स्कंद है वह भी घनांगुल के असंख्यात भाग है। दोनों असंख्यात भाग है फिर भी ए से बी असंख्यात गुणा है। अब ए में भी विस्तार है ना, उसके भी तीन डायमेंशन है। तो घनांगुल किसको कहते हैं? अंगुल गुना अंगुल गुना अंगुल, इसका असंख्यात भाग है। घनांगुल का असंख्यात भाग है तो उसके तीन डायमेंशन है, तो उसकी एक एक डायमेंशन कितनी होगी? तो अंगुल का असंख्यात भाग एक एक डायमेंशन, ये असंख्यात भी हमने तीन में डिवाइड करेंगे। तो अंगुल का असंख्यात भाग ये असंख्यात की साइन है, उसकी एक कोई डायमेंशन अंगुल का असंख्यात भाग है, उसको ही सुचंगुल का असंख्यात भाग कहे तो कहे। यहां तक समझे? ये असंख्यात के बहुत भेद है ना। तो ए वाला भी स्कंद जो हमने देखा था वो भी घनांगुल का असंख्यात भाग, बी जो सूक्ष्म निगोद की अवगाहना देखी वो भी घनांगुल का असंख्यात भाग है, फिर भी द्रव्य वाला जो स्कंद है उससे ये असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा, गुणा का अर्थ होता है बड़ा। अब ए वाला जो है उसके तीन अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे तो पूरा मिलकर घनांगुल का असंख्यात भाग है, तो उसकी एक एक डायमेंशन कितनी होगी? सुचंगुल का असंख्यात भाग। यहाँ तक समझे? अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी।
दिस इज फॉर माय नॉलेज, क्या कहीं जो हम द्रव्य के अपेक्षण कहता है ये नॉट पावरफुल
नहीं,
ये छोटा पे छोटा स्कंद जानेगा,
इतने छोटे तक जानेगा, इससे छोटा क्यों नहीं जानेगा? ये अवधि ज्ञान की मिनिमम लिमिट है।
मिनिमम
द्रव्य में मिनिमम लेना, छोटे में छोटे कहाँ तक जानते हैं? ये ऑलवेज वो ऑप्शलमोलॉजिस्ट वाला वो चार्ट याद कर, छोटे में छोटे कौन सा अक्षर पढ़ सकते हो ये आपकी लिमिट है। उससे पावरफुल ज्ञान होगा तो क्या होगा? उससे भी छोटे अक्षर पढ़ सकेगा।
इससे बड़े स्कंद तो सभी जान सकते,
बड़े की बात ही नहीं है ना। जघन्य अवधि ज्ञान बड़ा स्कंद जाने उसमें क्या उसकी स्पेशलिटी? बड़ा भी कितना बड़ा जानेंगे, अपने क्षेत्र के अंदर होगा वही उतने को जानेगा।
नहीं यहाँ के जो द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान आएगा उसमें क्या लेना?
उत्कृष्ट वो आएगा ना द्रव्य की अपेक्षा, पूरा लोक आएगा। अभी हम जघन्य में अटके हैं अभी।
फाइनल भी बता दो ना, पूरा लोकल जानेगा
क्षेत्र में। हाँ, द्रव्य अपेक्षा नीचे लेना, परमाणु तक जानेगा, और क्षेत्र की अपेक्षा पूरा लोग जानेंगे। हाँ, उसकी जानने की कैपेसिटी वो सर्वावधि में चले जाएगा। कार्मान स्कंद भी उसके अभी देशावधि में, कार्मान स्कंद का भी अनंतवा भाग आएगा, वो परमाणु वाला वो सर्वावधि वाला में चले जाएगा।
ये अवधि ज्ञान की बात है, उसमें डिवीजन नहीं किया
अभी। हाँ, पूरे अवधि के हम अभी सर्वावधि तो कितना जानता है, तो असंख्यात लोग कितना जानता है?
कैपेसिटी है।
हाँ, उसकी परमाणु कैपेसिटी। यहाँ द्रव्य में एक परमाणु लेना और क्षेत्र बढ़ाना असंख्यात लोग तक, पर देशावधि की लिमिट वो लोग तक चली जाएगी, देशावधि की। उसमें भेद है ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। वो बात आएगी ना अभी आगे, क्रम से आएगी।
आप डिटेक्टिव पुस्तक पढ़ते तो पहला एंड पढ़ते क्या?
हाँ, पहला एंड ही पढ़ लेते
नहीं, पिक्चर में पहला एंड जो है पहला नहीं, कभी कभी देख लेते हैं। मैं कभी भी पुस्तक पढ़ता हूँ तो पहले वो सार और उपसार पहले पढ़ ले, सब ऐसे।
देखो ये तो ये बताए ना, ये सूत्र के साथ विरोध होगा अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे तो। बराबर, यहाँ तक समझे? अब आगे 23 पृष्ठ पर दूसरी लाइन, चूंकि अब शंकाकार ऐसा पूछ सकता है कि वो एक सिंगल लाइन में जानता है इसलिए वो असंख्यात गुणा का प्रसंग नहीं होगा। देखो, चूंकि अवधि ज्ञानी एक श्रेणी में ही जानता है, श्रेणी का अर्थ होता है पंक्ति, यानी एक डायमेंशन में ही जानेगा ऐसा कहेंगे, अतएव सूत्र विरोध नहीं होगा ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर चक्षु इंद्रिय जन्य, इंद्रिय और जन्य एक शब्द चाहिए, चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान की अपेक्षा भी उसके जगन्यता का प्रसंग प्राप्त होता है। इसका अर्थ समझ में आया? कहाँ है पुस्तक आपकी? घर में। देखो क्या कहते हैं, यदि कोई कहता है अवधि ज्ञान तो एक लेवल में एक ही सिंगल लाइन में जानता है, आजू बाजू का ऊपर नीचे का नहीं जानता, यदि ऐसे कोई कहेंगे तो चक्षु इंद्रिय से तो हम ऊपर नीचे आजू बाजू कितना ही विस्तार से जानते हैं, तो अवधि ज्ञान उससे भी गया बीता हो जाएगा। उससे भी क्या लिखा हुआ, जघन्यता का प्रसंग है ना, अवधि ज्ञान चक्षु ज्ञान से भी जघन्य हो जाएगा, उससे भी हीन होगा, उससे भी कम कैपेसिटी का हो जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं है कि बस एक सिंगल लाइन में जानेगा और आजू बाजू का कुछ नहीं जानेगा, ऐसा तो होता नहीं है। कारण कि चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान से, चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान द्वारा, यानी हम अपनी भाषा में कहेंगे आंखों द्वारा क्या क्या देख सकते हैं, संख्यात सूचंगुल विस्तार उच्छेद और आयाम रूप क्षेत्र के भीतर स्थित वस्तु का ग्रहण देखा जाता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम कितना जानते हैं, जो कुछ यहाँ 5-25 फुट, वो संख्यात अंगुल ही होगी ना, भले हजारों अंगुल भी हो जाएगी फिर भी उसको संख्यात अंगुल कहेंगे, योजन कहेंगे, एक योजन भी कहेंगे तो भी संख्यात अंगुल हो जाएंगे, असंख्यात तो नहीं होते उसमें। तो इसलिए कहते हैं संख्यात सचंगुल विस्तार एंड चौड़ाई, उच्छेद यानी ऊंचाई और आयाम यानी ऐसा लंबा, यानी हम तीन डायमेंशंस में जानते हैं आंखों के द्वारा भी, ऊपर का नीचे का, सामने देखते तो पूरा इतना सारा ये लंबा रास्ता है, इतने सारे बसेस आ रही है, ये ब्रिज है, ये कितने झाड़े पेड़ है, मकान है, सब कुछ देखते हैं, तो लंबाई में भी देखते हैं, ऐसा चौड़ाई का विस्तार भी बहुत सारा है आंखों के द्वारा देखते हैं, और हाइट भी बहुत सारी देखते हैं। वस्तु का ग्रहण यानी वस्तु का जानना होता है, तथा वैसा मानने पर इस जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का आयाम असंख्यात योजन प्रमाण प्राप्त होगा। यदि आप कहते हैं एक श्रेणी में इतना होता है, एक श्रेणी में इतना जानता है ऐसा कहेंगे, तो फिर तीनों श्रेणियों को हम गुणा करेंगे तो असंख्यात योजन उसका वो गणित लंबा चौड़ा चलेगा, ऐसे यहां कहना चाहिए। शंका, यदि उक्त अवधि क्षेत्र असंख्यात योजन आयाम रूप प्राप्त होता है तो होने दीजिए, क्योंकि वह इष्ट ही है। ऐसा मानने पर यदि अवधि का क्षेत्र असंख्यात योजन होता है तो होने दो ना, उसमें क्या इष्ट है ने? अच्छा है वो, हाँ। उसका समाधान, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके काल से, अब यहाँ बात किसकी चल रही है, जघन्य द्रव्य, जघन्य क्षेत्र, जघन्य काल की अभी बात उठाई नहीं है, परंतु उठाएंगे, और जघन्य भाव, और यहीं पर जघन्य के लिए ही अगर असंख्यात योजन वाला क्षेत्र मानेंगे तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसके काल से यानी जघन्य काल से, जघन्य काल कितना होता है, जो जघन्य में जघन्य अवधि ज्ञान है, कितना काल आगे पीछे का जानता है, तो कहते आवली का असंख्यात्व, ये बात आगे चलकर आएगी, एक दो पृष्ठ पर आगे आने वाली है। देखो आपको जानना है ना 24 पृष्ठ पर निशेचे चौथी लाइन। देखो जघन्य काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है बरोबर। क्षेत्र कितना क्या होता है जघन्य क्षेत्र नीचे से पांचवी लाइन में। जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात भाग और जघन्य काल आवली का असंख्यात भाग। बाकी नहीं पढ़ेंगे उसका अर्थ तो समझ में नहीं आने वाला अभी। इतना तो समझ में है ना यहाँ क्या कहना चाहते समाधान में। अभी फिर वापस समाधान पर आते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि अब यहाँ काल जघन्य है। जघन्य काल आवली का असंख्यात भाग है और आगे कोई ऐसा प्रोपोर्शन वाले बताने वाले कि अमुक एक पॉइंट पर इतना काल होता है उसका इतना विस्तार होता है इतने तक जानते हैं इतने द्रव्य तक जानते हैं इतने भाव तक जानते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेप्स बताएंगे जैसे जघन्य बताया फिर दूसरा वाला भेद वो कितना जानता है आगे 5-25 भेद जाने पर वहां कौन सी एक विशिष्ट उसका हम कहें ना माइलस्टोन यहाँ पर इतना काल है इतना क्षेत्र तक जानता है। तो ऐसे आगे जो बताने वाले हैं तो ये जघन्य काल जो बताया उससे असंख्यात गुणा ऐसा एक अर्धमास यानी 15 दिन। जब 15 दिन पूर्व और पीछे का जानने लगता है उतना जब काल है अवधि का तो उस मर्यादा वाले अवधि का क्षेत्र कितना होता है वो भी निश्चित है। तो कहते उस काल से अनुमित अनुमित यानी उससे जो प्रमित है उससे जो नापा जाता है या उस काल के साथ जो पाया जाता है जिसके 15 दिन के आगे पीछे के काल के जानने की कैपेसिटी है उस अवधि ज्ञान में क्षेत्र कितना जाना जाता है या कहाँ तक के क्षेत्र को जानता है। तो कहते असंख्यात गुणे भरत रूप अवधि क्षेत्र में भी देखो क्या कहते हैं जहाँ काल असंख्यात गुणा होता है वहां क्षेत्र भी असंख्यात गुणा होना चाहिए बराबर। तो क्षेत्र हमने कितना देखा घनांगुल का असंख्यात भाग जो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की अवगाहना है। काल जघन्य कितना है आवली का असंख्यात भाग। जब काल बढ़कर 15 दिन होता है कितना बढ़ा असंख्यात गुणा बढ़ा तो वैसे क्षेत्र को भी असंख्यात गुणा करेंगे तो असंख्यात योजन हो जाएगा। तो कहते हैं असंख्यात गुणे भरत रूप अवधि क्षेत्र में भी। तो जब 15 दिन का अवधि का काल होता है तो उस अवधि ज्ञान के लिए क्षेत्र कितना होता है तो भरत क्षेत्र जितना जानने लगता है। जिसको 15 दिन का अवधि ज्ञान है आगे पीछे का उसको कितने क्षेत्र तक के पुद्गल को वो जानता है अवधि ज्ञान से तो भरत क्षेत्र जितने क्षेत्र को। भरत क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है हमने देखा था 526 योजन तो ऐसे उसकी उत्सेद है और ऐसा 14,000 और वो कितना क्योंकि वो धनुषकार है ना ऐसा धनुष का आकार का है तो इतने लंबे चौड़े क्षेत्र को जानने लगता है। फिर भी वो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है 526 योजन तो उसके वेद यानी वो उत्सेद है और ऐसा आड़ा धनुष का जो जीवा कहते हैं जहां हम बाण लगाते हैं ना वो दोरी बांधते तो ऐसे आड़ा विस्तार कितना है 14,000 समथिंग। फिर भी वो संख्यात में है असंख्यात योजन तो है ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं भरत रूप अवधि क्षेत्र में भी असंख्यात योजन प्रमाण आयाम नहीं पाया जाता। जब काल असंख्यात गुणा होकर 15 दिन होता है तब क्षेत्र भी भरत क्षेत्र जितना होता है परंतु भरत क्षेत्र में भी असंख्यात योजन नहीं है संख्यात योजन है गिने चुने योजनों का भरत क्षेत्र है। क्या है ना इसका अर्थ इस वाक्य का अर्थ भी इस तरह से समझना। दूसरा यानी दूसरा कारण उत्कृष्ट देशावधि ज्ञानी संयत। अभी हम जघन्य देशावधि की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट देशावधि किसको होगा संयतों को होगा मुनिराजों को होगा। देशावधि की बात है देशावधि में सबसे अधिक से अधिक वो अपने उत्कृष्ट द्रव्य को आदि करके एक परमाणु आदि अधिक्रम से स्थित घनलोक के भीतर रहने वाले सब पुद्गल स्कंदों को क्या युगपत जानता है या नहीं जानता ये स्वयं आचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि नहीं जानता है तो उसके अवधि क्षेत्र लोक नहीं हो सकता। ये उत्कृष्ट अवधि देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है तो लोक है, जो अभी बताया नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रश्न के रूप में उसको बता ही दिया है। तो जिसका क्षेत्र लोक जितना है तो लोक में जितने परमाणु या स्कंद जो कुछ है उसको वो जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। यदि नहीं जानता तो उसका अवधि क्षेत्र लोक नहीं हो सकता। जिसका जितना क्षेत्र तक जानने की कैपेसिटी है उसको ये प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उतने क्षेत्र के पुद्गल परमाणु स्कंदों को जानेगा ही। बराबर, यहां तक समझ में है? क्योंकि वह एक आकाश श्रेणी में स्थित पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता है। ये एक ही क्षेत्र में ग्रहण करने की बात उठाई थी किसी आचार्यों के मुख से, उन्होंने बताया। ऐसी कोई परंपरा चली है, यदि एक श्रेणी में जानता है अवधि ज्ञान ऐसा कहेंगे तो उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? लोक है। तो लोक में घन लोक कहेंगे क्या? सिंगल लोक या नहीं, वो सात राजू वाला कहना पड़ेगा, एक श्रेणी कहनी पड़ेगी, जगत श्रेणी कहनी पड़ेगी। तो अगर जगत श्रेणी में जानता है कहेंगे तो पूरा लोक उसका क्षेत्र नहीं घटित हो सकता। इसका अर्थ क्या? वो तीनों ही डायमेंशन वाला घन प्रमाण में कोई जो क्षेत्र है वो घन प्रमाण होगा, एक श्रेणी रूप नहीं होता। अवधि ज्ञान का क्षेत्र घन रूप होता है, श्रेणी रूप नहीं होता, ये बात यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। और यदि आप कहेंगे एक ही आकाश पंक्ति में जानते हैं तो आकाश पंक्ति तो घन लोक नहीं हो सकता, क्योंकि लोक तो घन स्वरूप है, घन स्वरूप है, हम उसको इक्वलाइज करेंगे सभी ओर से तो सात राजू और सात राजू का होता है, वो अनइक्वल है ना, ऊपर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा ऐसा होता है। यह एक आकाश पंक्ति घनलोक प्रमाण हो नहीं सकती, क्योंकि घनलोक के असंख्यात भाग रूप उसमें घनलोक प्रमाणत्व का विरोध है। क्या कहते हैं? एक आकाश पंक्ति घन लोकाकाश की एक आकाश पंक्ति कितने हैं? अभी हम इक्वल करके कहेंगे तो सात राजू, बराबर। तो वो सात राजू है, वो घन लोक का कौन सा भाग है? देखो, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी तो होता है जगत घन। तो जगत श्रेणी ये लोक का कौन सा भाग है? असंख्यात का भाग है। संख्यात कैसे कहते? पीछे राजू का पूंछ लगी है ना। जगत श्रेणी इटसेल्फ असंख्यात संख्या है, तो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात, कौन से वाला असंख्यात? जगत श्रेणी वाला असंख्यात। तो जगत श्रेणी वो क्या है? पूरे लोक का असंख्यात भाग है। तो यदि हम एक ही सिंगल आकाश पंक्ति में जानता है ऐसे कहेंगे तो घन लोक को जानता ऐसा सिद्ध नहीं होगा, उसके असंख्यात भाग प्रमाण जगत श्रेणी उसको जानता ऐसा कहना पड़ेगा। अवधि ज्ञान एक श्रेणी में जानता है ऐसा कहने से क्या क्या दोष होगा वो आगे चलकर बताए। उसके लिए उन्होंने दृष्टांत उत्कृष्ट अवधि का क्षेत्र का समझा, देशावधि का लिया, प्रमाणत्व का विरोध है। इसके अतिरिक्त वह कुलाचल, मेरु पर्वत, भवन विमान, आठ पृथ्वियों, देखो पेश पलटने के पहले इसका अर्थ देखते हैं। कुलाचल का अर्थ याद है? कुलाचल, हाँ, छह कुलाचल कहाँ होते हैं? पांच मेरु संबंधी, जो मनुष्य क्षेत्र है सबसे सेंटर का जम्बू द्वीप है, वैसे ही आगे समुद्र के बाद फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप है। तो उसमें मनुष्य क्षेत्र में जो ढाई द्वीप कहने में आते हैं तो उसके पांच अलग अलग भेद किए हमने, क्योंकि बीच वाला जम्बू द्वीप तो एक पूरा अखंड गोल लेना, उसके बाद लवण समुद्र के बाद वाला जो धातकी खंड है उसके दो भाग करना, एक पूर्व वाला और एक पश्चिम वाला, और पुष्कर अर्ध का भी पूर्व और पश्चिम ऐसे दो विभाग करना, ऐसे पांच अलग अलग करेंगे। तो इन हरेक में छह छह कुलाचल पर्वत पाए जाते हैं। बीच में मेरु पर्वत है, उसके दक्षिण की ओर तीन कुलाचल पर्वत और उत्तर की ओर तीन कुलाचल, ऐसे हरेक वो जो द्वीप है वो सात भागों में विभाजित होगा, सात देशों में कहेंगे उसको। तो ये कुलाचल है। मेरू पर्वत तो पता है, बीच वाला सुदर्शन मेरू है, और भी अन्य मेरू है ना, नाम याद है आपको? हाँ, विद्युन्माली आखिर वाला, पहले हम सेंटर वाला सुदर्शन मेरू, विजय अचल, यानी वो पश्चिम की तरफ आना, फिर विजय यानी पूर्व की ओर, पूर्व धात की, पश्चिम धात की में अचल, विजय अचल, फिर मंदर और विद्युन्माली, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम, ऐसे ये पांच मेरू, मंदार मंदार दोनों मंदार, भवन विमान, भवन अलग है विमान है, अच्छा, भवन वासियों के भवन और वैमानिकों के विमान, ऊपर क्या लिखा है? नचसो कुलसेल मेरू महियर भवन विमान अठ पुड़वी, वो सब एक है, यानी भवन और विमान अलग अलग चाहिए। आठ पृथ्वियों, ये आठ पृथ्वियां कौन कौन सी? सात तो नीचे, यानी चित्रा से लेकर नीचे तक सात, और आठवीं जो ईशत प्रागभार है, जिसके बीचों बीच सिद्ध शिला पाई जाती है, ऐसी आठ पृथ्वियां, देव विद्याधर, विद्याधर कौन सी जाति के, कौन से गति के जीव है मालूम है? मनुष्य गति के, रहते कहाँ है? विजयार्ध पर्वत के दोनों श्रेणियों में रहते हैं, वहां उनकी नगरियां पाई जाती है। विजयार्ध पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? जैसे भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र के सेंटर में आड़ा ऐसा फैला हुआ विजयार्ध पर्वत है, एक विजयार्ध और दो नदियां, इनके द्वारा ये जो क्षेत्र है वो छह छह में खंडित होते हैं, उसमें पांच म्लेच्छ और एक बीच वाला आर्यखंड नीचे वाला, विदेह में भी ऐसा, भरत में भी ऐसा, ऐरावत में भी ऐसे ही। भरतादि में तो उसके हम नाम कहेंगे गंगा सिंधु दक्षिण की ओर, और ऐरावत वगैरह और उत्तर बाजू के जो विदेह वहां रक्ता और रक्तोदा नदियां होंगी, परंतु बीच वाले पर्वत को सर्वत्र विजयार्ध पर्वत ही कहेंगे, वहां ये विद्याधरों की नगरियां बसती है। गिरगिट और सरीसृपादिकों को भी नहीं जान सकेगा, ये बात किसकी चल रही है? यदि एक श्रेणी में जानेंगे तो इन सभी बातों को नहीं जान सकते। गिरगिट ने क्या
चिपकन,
नहीं नहीं नहीं, गिरगिट यानी वो सरड़ा, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, शैमेलियन, उसको तो शैमेलियन कहते हैं। गिरगिट और सरीसृप यानी अन्य अन्य प्राणी, अभी किसी का भी नाम लेना इसलिए लिखा है, ऐसा कोई उसी की कोई महत्ता नहीं है यहाँ पर। हम मनुष्य भी कह सकते हैं, कुत्ता भी कह सकते हैं, बिल्ली भी कह सकते हैं, एक सिंगल लाइन में तो नहीं स्थित है वे। यदि हम कहेंगे एक सिंगल लाइन में जितना है उसको जानेंगे, तो अभी वो बीच में कोई चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो उसका एक पॉइंट हम उसको नहीं बता सकते, ये कुत्ते का पॉइंट है, बिल्ली का है, ख्याल है ना? यदि एक सिंगल लाइन में उनका कोई एक एक प्रदेश आएगा या कोई असंख्यात प्रदेश भी आएंगे, हम अभी ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसमें बीच क्या है? माइक है, फिर ये यहाँ बर्नी है, आगे चलकर सोफा है, तो वो एक पॉइंट किसका हम नहीं बता सकते ना। उतने छोटा स्कंध हो जाएगा वो, तो इसको भी नहीं जान सकेगा, क्योंकि इनका एक आकाश में अवस्थान नहीं है, आकाश की एक पंक्ति में ये स्थित नहीं है, बहुत सारे पंक्तियां है ना, वो तो घन स्वरूप है ये सारी चीजें, और वह उनके अवयव को भी नहीं जानेगा, ये बात है। उस सिंगल लाइन में जो उसके अवयव हो गए उनके, वो कोई पर्वत का अवयव होगा उतने क्षेत्र में, क्योंकि हमने आकाश की एक श्रेणी ली है, उसमें कोई पर्वत है, कोई प्राणी बीच में, कोई वृक्ष है, कोई नदी है, जो कुछ है, तो उन अवयवों को भी नहीं जान सकेगा कि ये विशिष्ट इसका अवयव, ऐसा भी नहीं कह सकेगा, क्योंकि अवयवी के अज्ञात होने पर यह इसका अवयव है इस प्रकार जानने की शक्ति नहीं हो सकती। पूरा वो कुत्ते को या बिल्ली को या जो कुछ हम पर्वत को जानेगा तो ये पर्वत का पॉइंट है, पर्वत का ये भाग है, ऐसा कह सकते हैं। यदि मूल वस्तु को ही नहीं जानेगा तो ये किसका भाग है कैसे कहेंगे? यदि वह युगपत सब घनलोक को जानता है तो हमारा पक्ष सिद्ध है, क्योंकि वह प्रतिपक्ष से रहित है। देखो ये न्याय की भाषा होती है, जब कोई पॉइंट समझाना है तो ये उसके अलग अलग, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा, ऐसा कहकर अपना पॉइंट सिद्ध करते हैं। तो ये बात सिद्ध हुई, वो घन रूप क्षेत्र को जानेंगे। सूक्ष्म निगोध जीव की अवगाहना को घन प्रतलाकार से स्थापित करने पर एक आकाश विस्तार रूप अनेक श्रेणी को ही जानता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर जितनी सूक्ष्म निगोध जीव की जघन्य अवगाहना है उतना ही जघन्य अवधि का क्षेत्र है, ऐसा कहने वाले गाथा सूत्र के साथ विरोध होगा। ये क्या कहते हैं, ये सूक्ष्म निगोध की अवगाहना को घन प्रतराकार यानी घनाकार, यानी अवगाहना को एक बार लो फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार उसका घन करो, ऐसा भी कहेंगे, या प्रतराकार यानी उसका वर्ग करो, स्क्वायर करना। हाँ, यदि ऐसा करेंगे तो भी विरोध आएगा। और छद्मस्थों के अनेक श्रेणियों का ग्रहण विरुद्ध नहीं है, एक ही श्रेणी में ऐसा ऐसा जानते ऐसा नहीं कह सकते। प्रतराकार ने स्क्वायर में, पहले तो श्रेणी में बताया, अब प्रतराकार में स्क्वायर में, एक ही लेवल पर, परंतु उसको दो डायमेंशंस, प्रतराकार में दो डायमेंशन लिए, घनाकार में हम तीन डायमेंशंस लेते हैं, तो वो भी यहां नहीं हो सकता। एक श्रेणी में प्रतराकार उन्होंने स्थापित किया, एक लेवल में, एक सतह पर प्रतराकार लिया, जैसे एक सतह पर अभी ये स्लेट है तो इसको ग्रहण किया, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी ये कौन सा दोष है, चक्षु इंद्रियों के द्वारा तो हम अनेक श्रेणियों को जान सकते हैं एक साथ, ये बुक जो है उसके तो अभी ये कितना 2 इंच तो चौड़ा है, ये समय ज्ञान चंद्रिका इतना ज्यादा है, तो उसको हम एक साथ जानते ना, वो एक प्रतर पर नहीं, उसके तो 2 इंच में जितने कुछ आकाश की जो श्रेणियां हैं उन सबको एक साथ जान रहे हैं। तो कहते हैं क्योंकि चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान से अनेक श्रेणियों में स्थित उद्गल स्कंदों का ग्रहण पाया जाता है, अनेक श्रेणियों में स्थित यानी उसकी चौड़ाई ऊंचाई हाइट जो कुछ है वो अनेक अलग अलग श्रेणियों को मिलकर हम जान रहे हैं, एट अ टाइम जान रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी इतना जानते हैं, और अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जानेंगे कहेंगे तो उससे भी जघन्य हो जाएगा। ये भाषा बहुत ऐसी कुछ अटपटी है, तो हाँ न्याय की हाँ, अभी अकेला न्याय नहीं है, उसके साथ अभी ये उत्कृष्ट अवधि की बात के बीच में लोग थी जो हमें पता नहीं था, यहाँ से जो आगे चलकर आने वाला है उत्कृष्ट अवधि ज्ञान संयतों में होता है, और वो उसका क्षेत्र कितना है तो घन लोक प्रमाण उसका क्षेत्र है। ये समझाने के लिए उन्होंने कोई बातें आगे की भी ली है, ये काल का जो लिखा है 15 अर्ध मास वाला और भरत क्षेत्र रूप अवधि है, तो वहां ऐसा पढ़ने से कुछ नहीं पता चलता ये क्या बात है, आगे जब अलग अलग पॉइंट पर कितना क्षेत्र कितना काल होता है कितना उसका बात होती है, वो अभी पहले पता होगा तो इसका अर्थ समझ में आता है, ख्याल है ना, इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। यहां तक तो समझ में आया तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते देशावधि के 19 कांडकों में से, हाँ 5 नंबर की गाथा हमने उसके 2 लाइन खाली रेफरेंस के लिए देखी थी, देखो तो हम यहाँ यह गोमटसार जीव कांड की उन्होंने गाथा उद्धृत की है।
अंगुल मावली आए भागम संख्ये जदो विसंख्ये चा, अंगुल मावली अंतो आवलियम चांगुल बुधत्तम।
इसका अर्थ नीचे लिखा है, देशावधि के 19 कांडकों में से, ये कांडक क्या होते हैं देशावधि के 19, पहले ये पूरा अर्थ पढ़ेंगे फिर मैं बताएं। प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण और जघन्य काल, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अभी हमने देखा जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है और काल कितना है, इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र विशिष्ट कांडक में, अभी विशिष्ट उन्होंने बताया अवधि ज्ञान के विशिष्ट भेद, उसमें जघन्य में जघन्य कितना और अधिक से अधिक कितना, जघन्य अवधि ज्ञान कम से कम क्षेत्र को जानेगा तो कहां तक और अधिक से अधिक कहां तक, तो उसका उत्कृष्ट प्रमाण इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात विभाग प्रमाण है। ये तो पहला कांडक हुआ। द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम आवली प्रमाण है, ये तीनों कांडक इसमें बता दिए। तृतीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथक्त्व यानी कुछ घनांगुल हो जाता है और काल पूर्व आवली प्रमाण है। अब ये कांडक क्या है उसकी बात हम करेंगे। ये देशावधि वाला प्रकरण निकालना है इसमें से। पुस्तक आना लाओ तो अच्छा है। पहला भाग देखो अभी यहाँ, हाँ पेज नंबर 541 अब यहाँ पढ़ने से पहले थोड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ। अब हमने देखा था ना, पहले ए नाम के इतने स्कंद को जानता था, अभी जरा बड़ा लिखा मैंने। अवधि ज्ञान का आगे वाला कोई ऐसा भेद होगा तो वो इससे भी छोटे स्कंद को जान सकेगा, क्योंकि वो पावरफुल अवधि ज्ञान है, तो वो इससे छोटे स्कंद को जानेगा, यानी इसके असंख्यात विभाग प्रमाण स्कंद को जानेगा। उसके आगे वाला उससे भी छोटे स्कंद को जानेगा, उससे आगे वाला उससे भी छोटे स्कंद को जानेगा। अब क्षेत्र में हमने कितना देखा था, वो बी वाला देखा था एरिया। तो ये द्रव्य के इतने, द्रव्य की अपेक्षा अभी जो अवधि ज्ञान के अलग अलग वेद कह रहे हैं ना, द्रव्य की अपेक्षा अवधि ज्ञान के वेद कितने हो गए। तो जो ए नंबर के स्कंद को जानने वाला A1, A2, A3, A4 ऐसा लगा था, उतने द्रव्य को जानने की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के भेद हो गए। परंतु क्षेत्र की अपेक्षा अगर भेद करने जाओ तो ऐसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ A1, A2, A3 कुछ ऐसे नाम दिए, A10 तक, द्रव्य की अपेक्षा इतने भेद हो जाते हैं, फिर भी उसका क्षेत्र कितना जानता है, वो सूक्ष्म निगत लब्धिय पर्याय, तो वो बी वाला ही चलेगा उसका। द्रव्य की अपेक्षा अवधि ज्ञान के इतने सारे भेद हो जाते, कितने होते हैं, सूक्ष्ममूल के असंख्यात विभाग प्रमाण भेद हो जाते, तब तक क्षेत्र वही का वही उतना ही रह जाता है। यानी आगे आगे वाला अवधि ज्ञान उससे सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंदों को जानता रहता है, फिर भी उसका क्षेत्र की लिमिट बढ़ती नहीं, अभी वो उतनी क्षेत्र की रहेगी उसकी। तो क्षेत्र की अपेक्षा भेद गिनेंगे तो अलग हो गए, ये द्रव्य की अपेक्षा भेद है। अब काल की अपेक्षा भेद जान देखने जाओ तो इसमें भी B1, B2 आदि जो कुछ हम यहाँ क्षेत्र के भेद करेंगे, उसमें इतने ही क्षेत्रों के लिए काल तो वही का वही रहेगा। तो द्रव्य और भाव में तो जल्दी पलटना होगा, और इसलिए क्षेत्र और काल को बताएंगे। इतने जब क्षेत्र है तो इतना काल है, इतना क्षेत्र है तो इतना काल है, ऐसा कहेंगे यहाँ पर। द्रव्य के हाँ, द्रव्य के और भाव के ज्यादा होंगे, और उससे क्षेत्र से ज्यादा होगी, उससे काल के ज्यादा होंगे, नहीं कम होगे, कम होगे, उल्टा प्रोपोर्शन लेना। अब यहाँ हम सुनेंगे ये 19 कांडकों में क्या बता रहे हैं। तो 19 स्टार्टिंग पॉइंट है, द्रव्य में इतना है, क्षेत्र में उसका प्रमाण इतना है, काल में इतना है और भाव में इतना है, ये पहला कांडक हो गया। आगे कोई विशिष्ट पॉइंट पर वो बताएंगे इतना द्रव्य इतना, ये क्षेत्र और काल को ही बता रहे, द्रव्य और भाव को भी यहाँ छोड़ेंगे। तो इतने काल है तब इतना क्षेत्र हो जाता है, ऐसा आगे कहीं कहेंगे। फिर आगे के कांडक में कहेंगे इतना काल है इतना क्षेत्र है। अभी हमने पढ़ा था भरत क्षेत्र और 15 दिन का ये विशिष्ट कांडक है वो। तो ऐसे ये 19 कांडकों को बताया। अब हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका में से पढ़ेंगे। यहाँ आगे विषयभूत क्षेत्र और काल अपेक्षा। विषयभूत यानी अवधिक ज्ञान का जो विषय है उसमें विषयभूत ऐसा कितना क्षेत्र है और कितने काल तक जानता है उसकी अपेक्षा से, यानी क्षेत्र और काल की अपेक्षा से देशावधि के 19 कांडक कहूंगा, ऐसे आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। कांडक यानी ऐसे अलग अलग पोजिशन पर कहाँ कितना क्षेत्र को जानता है, उसी प्वाइंट पर कितने काल को जानता है, उसे ऐसे अलग अलग माइलस्टोन्स कहेंगे। ये पोजीशन पर ये बात हुई, आगे की पोजीशन पर ये बात है। तो ऐसे ये 19 कांडक बता रहे।
तो यहाँ पे जो 19 कांडक की डेट बता रहे वो फिक्स है?
वो फिक्स है। प्रथम कांडक वो जघन्य वाला होगा। देखो अभी हम पढ़ते हैं 542 पृष्ठ पर। ये तो अभी हम गाथाओं में यही बात पढ़ने जा रहे हैं ना। चार से चार गाथा जो अभी हमने पढ़ी, अभी जो मैंने जो आपको कहूंगा ऐसा जो है ना, अंगुलम आवली आए वगैरह वगैरह, वही बात यहाँ बताई, उसकी टीका मैं पढ़ रही हूँ। अभी जो हमने 5 नंबर की गाथा यहाँ पर पढ़ी उसके ही अर्थ में, उसकी टीका में, जो गोमर सार की टीका है और यहाँ पंडित डोरल जी ने अपनी भाषा में लिखा है, उसको पढ़ती हूँ मैं। प्रथम कांडक विषय जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। हमने देखा था सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की जो जघन्य अवगाहना है वो घनांगुल का असंख्यात भाग, वो बार बार वो सारा रिपीट नहीं करेंगे। और काल कितने जघन्य काल वो भी हमने देखा था, आवली का असंख्यात भाग। तीसरी प्रथम कांडक विषय उत्कृष्ट क्षेत्र। अभी कांडक है ना, अभी देशावधि के विशिष्ट भेद लेंगे वहां पर, उसमें वो उत्कृष्ट क्षेत्र कितना होता है। देखो हमने क्या बात देखी थी, क्षेत्र के लिए हमने बी लिखा, B1, B2, B3 ऐसा B10 तक, और काल उतना का उतना ही रहेगा जघन्य, हम उसको सी कहेंगे। कितना है आवली का असंख्यात भाग, B1 से लेकर B10 जो क्षेत्र के भेद है उसके लिए काल वही का वही है, जैसे हमने द्रव्य में देखा था ना। अभी केवल क्षेत्र और काल में ही हमको कंपेयर करना है, तो क्षेत्र के बहुत सारे भेद हो जाते हैं तब काल वही का वही रहता है। तो B1 से लेकर B10 तक हमने अभी देखा, तो B1 ये हुआ जघन्य और B10 हुआ उत्कृष्ट, कौन से प्रथम कांडक के लिए। तो कांडक यानी ये अवधिक ज्ञान के क्षेत्र की अपेक्षा जितने भेद हो गए उसके लिए वही का वही काल है, उतने ही काल के लिए क्षेत्र में जघन्य और उत्कृष्ट मर्यादा होगी। काल अभी बदला नहीं है, आगे जाकर काल बदलेगा। तो जहां काल फिक्स है और क्षेत्र के अलग 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 वेरिएशन है उसको हम कहेंगे एक कांडक।
उसमें ए में कितना इतना ये बी बन जाता है,
हाँ, बी टेन तक जाते हैं तो ए बहुत ज्यादा जाता है असंख्यात। एक बार पलटा है ना क्षेत्र तो उसमें सूचंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्य के भेद होते हैं, स्कंदों के जानने के, वो द्रव्य के भी भेद कैसे निकालना उसका भी गणित आएगा आगे। यहाँ अभी तो क्षेत्र काल, ये कांडक कौन सी अपेक्षा से क्षेत्र और काल में, उसमें काल का एक एक भेद फिक्स रखना, काल के एक एक भेद के लिए क्षेत्र के अलग अलग वेरिएशन है बरोबर। तो उसमें जो कम से कम कितना है और अधिक से अधिक कितना है उसको कहेंगे हम प्रथम कांडक का ये जघन्य क्षेत्र और प्रथम कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र। काल उसके लिए जघन्य काल फिक्स है। देखो कहा है काल आवली का असंख्यात भाग प्रमाण है। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं, जघन्य क्षेत्र घनांगुल का असंख्यात भाग और जघन्य काल आवली का असंख्यात भाग। अब उसमें उसी प्रथम कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र पहले कितना था वो, हाँ अभी घनांगुल का संख्या तो अभाव हुआ, और काल आवली का असंख्या तो अभा, काल बदला नहीं अभी। अच्छा अभी जो पढ़ा नहीं, यहाँ भी लिखा है पूर्व में छपी प्रति में असंख्यात मिलता है। अंगुलम आवलियां तो अवलिया अंगुल पोत्तम, हाँ उसकी भी असंख्यात ही होगी, दो भी संख्या
संख्या
नहीं नहीं असंख्यात लिखा है उन्होंने। देखो इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल का संख्यात भाग और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात विभाग प्रमाणित संख्यात वाली का आवली का भी संख्यात वह कर दिया, वहाँ भी संख्यात भाग प्रमाण लिखा है। यानी इसके 10 हो गए तो इसके 2-3 ही हो गए, ऐसा ले लें हमको। हमने ये तो देखा था इतने क्षेत्रों के भेद में वही का वही काल देगा, फिर आगे वाला काल आएगा, फिर आगे वाला आएगा, क्योंकि यहाँ उसके आगे वाले क्षेत्र भी और बदलते जाएंगे। तो उसमें उत्कृष्ट और जघन्य का भेद क्षेत्र में भी और काल में भी, ये पहला कांड हुआ। अभी आगे उत्कृष्ट भेद अपेक्षा दूसरा कांडक विषय क्षेत्र घनांगुल प्रमाण है। दूसरे कांडक में उत्कृष्ट ही बता दिया, अभी जघन्य तो मालूम है, पहले का जो जघन्य है नहीं, पहले का जो उत्कृष्ट है उसमें आगे बढ़ा दो तो वो उसका उत्कृष्ट हो जाएगा, जघन्य हो सॉरी, पहले का जो उत्कृष्ट है उसमें वो कितने प्रदेश मिला दो तो दूसरे का जघन्य हो जाएगा। इसलिए अभी उत्कृष्ट उत्कृष्ट बताएंगे। तो द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण है, जो अभी हमने गाथा पढ़ी थी उसमें भी ऐसा है, और काल किछु घाटी आवली प्रमाण है, यह लिखा ना, कुछ कम आवली प्रमाण। अब तीसरे कांडक में क्षेत्र पृथक्व घनांगुल है और काल, यहाँ पूर्ण आवली लिखा है, वहां पृथक्व आवली लिखा है, 3 से ऊपर और 9 से नीचे पृथक्व संज्ञा जान चांगुल पुदत्तम आवलिय च अंगुल पुदत्तम, आवली भी पृथक्व और अंगुल भी पृथक्व लेना।
पूर्ण आवली प्रमाण लिखना है,
पृथक्व आवली प्रमाण चाहिए, पूर्ण के बदले पृथक्व आवली प्रमाण। अब ऐसे ही आगे आगे के कांडक कहेंगे, या हमें तो कितना उसका प्रोपोर्शन है उतना ही जानना है, उसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन कोई बात है ही नहीं उसमें। अभी हम 6 नंबर की गाथा इसमें से पढ़ेंगे, हाँ ये 25 पृष्ठ पर आए हम, वो 405 नंबर 6 नंबर वगैरह आगे आगे की गाथा है। आवलिय पुदत्तम गण पत्थोतः गाउम मुहूर्तंतो जोयण भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्नुवी संतु। चतुर्थ कांडक में काल आवली पृथक्व, यहाँ आवली पृथक्व है, और क्षेत्र एक घन हाथ प्रमाण है, उसमें हमने क्या पढ़ा था पृथक्व आवली प्रमाण, हाँ वहाँ पूर्ण आवली दिया था उन्होंने, मूल श्लोक में तो पंडित जी ने मैं पृथक्व ही लिखा था, पृथक्व में भी 3 से 9 होता है ना, अभी उसमें कम और ज्यादा ऐसा समझ लेना जो कुछ यथायुग्य है। क्षेत्र एक घनहात प्रमाण है। पंचम कांडक में क्षेत्र गव्युति अर्थात एक कोश तथा काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। छठे कांडक में कोश है ना, अभी सभी ओर कोश लेना, हम यहाँ बैठे हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी ओर कोश, एक एक कोश तो ऐसा ले सकते, तथा काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। छठे कांडक में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न मुहूर्त अर्थात एक समय कम मुहूर्त प्रमाण है, उसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। है तो वो अंतर्मूर्त है, परंतु विशिष्ट उसको भिन्न मूर्त है ना, एक ही समय कम पूरे मूर्त में। सप्तम कांडक में काल कुछ कम एक दिवस, दिवसंतो लिखा है ना, और क्षेत्र 25 योजन प्रमाण है, पन्नु विषम। अब आगे, भरहम्यद्धमासो साहियमासो विजम्बुदीवम्मि वासं च मनुवलोये वासपुदत्तं चरुजगम्मि। अर्थ ख्याल में आया होगा, देखो भरहम्य अर्धमासो यानी भरत क्षेत्र जहाँ लिमिट है जहाँ अर्धमास हो जाता है। देखो अष्टम कांडक में क्षेत्र भरत क्षेत्र और काल अर्धमास प्रमाण है, इसका दृष्टांत वहां दिया था ना, तो अर्धमास प्रमित या अनुमित ऐसा लिखा था। आगे क्या है, साहिय मासो यानी मास से कुछ अधिक और उसका क्षेत्र जम्बुद्वीपम में। नवम कांडक में क्षेत्र जम्बुद्वीप और काल एक मास से कुछ अधिक है। आगे क्या लिखा, वासम च मनुअलोय, वास यानी एक वर्ष और मनुष्यलोय यानी मनुष्य लोक यानी ढाई द्वीप 45 लाख योजन। दसवें कांडक में क्षेत्र मनुष्य लोक और काल एक वर्ष प्रमाण है। जब मनुष्य लोक कह दिया तो उसका विस्तार हमको मालूम है। ग्यारहवें कांडक में आगे क्यों नहीं, रुचगम यानी रुचकवर और वास पुदत्तम यानी वर्ष पृथत्व। ग्यारहवें कांडक में क्षेत्र रुचक द्वीप और काल वर्ष पृथत्व प्रमाण है। ये रुचक द्वीप कहाँ पर है, ग्यारहवा कौन सा है और तेरहवा कौन सा है, कुंडलवर है वो ग्यारहवा है और रुचकवर है वो तेरहवा है। इसको क्यों याद करना, क्योंकि वो अकृत्रिम हम चैत्यालय याद करते हैं तो नंदीश्वर द्वीप में हम देखे इतने 52 और उसके बाद कुंडलवर में भी 4 है, चारों दिशा में एक एक है और रुचक पर्व में भी 4। तो वहां तक का इसके अवधि ज्ञान है, रुचक द्वीप और काल वर्ष पृथक का प्रमाण है। अब आगे, पणुवीसयोजनानं ओहि वेंतर कुमार वग्गाणं संखेजयोजनानं जोईसियाणं जघन्नोहि। वेंतर और भवनवासी देवों का जघन्य अवधि क्षेत्र, ये उसमें भी जघन्य बात बताए, 25 योजन और ज्योतिषी देवों का जघन्य अवधि क्षेत्र संख्यात योजन प्रमाण है। अब ये 9 नंबर का, इसमें असुराणम असंखेज्या कोडियो शेष ज्योति संतानम संखाति दसहसा उक्कसो ओहि विसोदु। असुर कुमार देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र, ये उत्कृष्ट की बात है, ऊपर बताई थी वो जघन्य बताई थी। वेंतर और कुमार कहे था ना, कुमार यानी वो सारे भवनवासी, उसमें सारे अलग अलग कुमार ही है ना, असुर कुमार नाग कुमार उदधि कुमार वो सारे। तो अभी यहाँ उत्कृष्ट बता रहे, असुर कुमार देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र असंख्यात करोड़ योजन है। नहीं, इसमें काल नहीं बताया, क्योंकि ये देवों का कहाँ तक क्षेत्र है उसकी बात बताए, उस प्रोपोर्शन में उसका काल भी बढ़ेगा। ये कांडक नहीं बताए है, यहाँ तो इन देवों की बात बताई। हाँ, असुर कुमारों में भी उत्कृष्ट बताई, ऊपर कुमारों में जगह ने बताई दी थी। हाँ, असंख्यात आचार्य, ये असुर कुमार की ज्यादा बताए है ना, असंख्यात करोड़ योजने, और शेष 9 प्रकार के भुवनवासी व्यंतर एवं ज्योतिषी देवों का उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र असंख्यात हजार योजन प्रमाण है। क्या फुटनोट में महाबंध देखो, अभी हमने ये जो यहाँ 19 कांडक देखे थे ना, ग्यारहवें कांडक तो हमने देखा था ना, यहाँ आगे लिखे क्यों होंगे, बारहवा कांडक लिया है क्या?
यहाँ तो 10 कांडक ही
लिए,
ग्यारहवें तक ही दिए उन्होंने, हम बाकी कांडक देखेंगे। 26 पर वो देवों की बात की है, कांडक नहीं है वे। देखो देखो मैं आगे पढ़ती हूँ, 11वें तक हमने देखे, 12वें कांडक में ये 543 पृष्ठ पर है। अभी तो हमने 11 कांडक देखे ना, 11वें कांडक में, 12वें कांडक में वगैरह ये पेज है 543। वो कितना कितना क्षेत्र बढ़ता है उतना ही हमको कुछ याद रखने की बात नहीं, फिर पढ़ लेते हैं। अभी विशेष रूप है ना, देखो 12 कांडक में क्षेत्र संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, अभी हम कितने तक आए थे, 13वें तक, उसके आगे और बढ़ेंगे तो संख्यात, संख्यात कैन बी एनीथिंग, हजार भी लाखों भी, तो संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण और काल संख्यात वर्ष प्रमाण। 13वें कांडक जे तेजस शरीरादिक द्रव्य की अपेक्षा पूर्व स्थानक कहे, अभी अपना हुआ नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा भी अलग अलग स्थान कहेंगे। अभी हमने कहाँ से शुरू किया तो वो अवतारिक का वो इतना इतना ऐसा भाग किया, उसके स्कंद को जानने वाले, फिर वो तेजस को जानने वाले कहेंगे, अश्रु विश्र सुप्त से रहित वाले कहेंगे, भाषा वर्गना की बात करेंगे, कारमान शरीर को कहेंगे, तो उसकी अपेक्षा ये बात कहे, तेजस का नाम लिया नहीं उसमें, 19 कांडकों में से 12वां है, उसमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण और काल असंख्यात वर्ष हो जाता है। इतने विशेष है कि 13वां और 14वां विषय असंख्यात गुणा क्षेत्र काल है, यानी आगे आगे ऐसे ही कहेंगे असंख्यात द्वीप समुद्र असंख्यात द्वीप समुद्र, परंतु वो पहले वाले से असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हो जाएंगे, काल भी असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऐसा ही कहते हैं, यानी उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा होता है। अब लास्ट 19वां बता रहे, 19वां अंत का कांडक विषय द्रव्य, तो अभी कितना होता है जो लास्ट बट वन है ना, उसमें कारमान वर्गना को जानता है, द्रव्य में जहां कारमान वर्गना, आगे वाला लास्ट कौन सा, कारमान वर्गना को भी वो विशिष्ट संख्या से भाग देना है, जिसको ध्रुव भागहार कहते हैं, वो भी कितना है वो आगे कहेंगे, वो इसमें भी विषय आने वाला है। तो वो लास्ट पॉइंट है द्रव्य का, वहां पर क्षेत्र कितना है उसको अभी बता दें। तो कारमान वर्गना को ध्रुवाहार का भाग दीजिए 3 प्रमाण, और क्षेत्र संपूर्ण लोकाकाश प्रमाण, जो हमने देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र देखा था, पूरे अवधि का नहीं, देशावधि का, देशावधि परमावधि सर्वावधि भेद है ना, उसमें से देशावधि वाला अधिक से अधिक कितना जानता है, तो पूरे लोक उतने क्षेत्र को, और काल एक समय घाटी एक पल्ल्य प्रमाण, मैंने कहा ना वो सागर नहीं हो सकता, पल्ले से भी एक समय कम, इतने काल पीछे और आगे को जानता है, अतीत काल उतना ही और भविष्य काल भी उतना ही। ये 19 कांडक पूरे। अब ये जो बात वो देवों की हो रही थी उसमें हम पढ़ेंगे भी। देखो अभी आगे हम पेज नंबर 26 पर,
संयत मनुष्य पर वो भी उत्कृष्ट,
हाँ देवों के तो इतना होगा ही नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट देशावधि जो है वो संयतों के हैं, पूरा लोक तो नहीं है ना। ये देवों की बात बता रहे हैं आप, अभी जो हम पढ़ रहे हैं दसवें नंबर की गाथा।
सखी साणा पणम दोचम तु सणक कुमार माहिंदा तच्चम तु बम्मलंतय सुख सहसारया चोत्त।
सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव प्रथम पृथ्वी तक, सनत कुमार और महेंद्र कल्प के देव द्वितीय पृथ्वी तक, ब्रह्म और लांतो कल्पों के देव तृतीय पृथ्वी तक, तथा शुक्र, वो शुक्र बराबर करना। शुक्र और सहस्रार स्वर्गों के देव चतुर्थ पृथ्वी तक देखते हैं। ये किसका अधिज्ञान कहाँ तक चलता है उसकी बात यहाँ बता रहे।
आनद पाणद वासी तह आरण अच्युदाय जे देवा पसंति पंचमखिदिम षठिम केवर्चया जेदु।
आनद प्राणद और आरण अच्युत कल्पों में रहने वाले जो देव है 13, 14, 15, 16 से वे पंचम पृथ्वी तक तथा ग्रेवेको में उत्पन्न हुए देव छठी पृथ्वी तक देखते हैं, वहां तक उनके जानने का क्षेत्र। ये नीचे की ही वो लिमिट बताए, ऊपर नहीं बताए। कल वाले अपने अपने ध्वजतंड तक ऊपर का जानते हैं और नीचे की ओर वो हर एक की अलग अलग कैपेसिटी बताए।
सौवम चलोयणालिम पसंति अणुत्तरे सुजे देवा सखेथे सकम ने रोगद मणंत वागोदू।
9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जो देव है, अभी याद आ रहे हैं ना 9 अनुदिश 5 अनुत्तर, वे सब लोकनाली, लोकनाली कहो या त्रसनाली कहो एक ही बात, पूरी लोकनाली अर्थात कुछ कम 14 राजु लंबी और 1 राजु विस्तृत लोकनाली को देखते हैं। ये कुछ कम में वो वात वाले को छोड़ना है, वो कुछ कम हो जाता है और ऊपर का भी चला जाता है ना, ध्वजदंड के ऊपर, सर्वार सिद्धि के ध्वजदंड के ऊपर क्या क्या है, आठवीं पृथ्वी है, फिर उसके ऊपर 3 वात वाले हैं, तो सबको उसको छोड़ना है क्योंकि ऊपर की अवधि उनके अपने ध्वजदंड तक ही है। अवधि का क्षेत्र, स्वक्षेत्र अर्थात अपने क्षेत्र के प्रदेश समूह में से एक प्रदेश कम करके अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म द्रव्य में एक बार अनंत अर्थात ध्रुवार का भाग देना चाहिए। इस प्रकार एक एक प्रदेश कम करते हुए ध्रुवार का भाग तब तक देना चाहिए जब तक उक्त प्रदेश समूह समाप्त न हो जावे। ऐसा करने पर जो द्रव्य प्राप्त हो वह विवक्षित अवधि का विषयभूत द्रव्य जानना चाहिए। क्या कहते हैं, उनका जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है उसके जितने परमाणु है उसको वो ध्रुव भागार हमने पहले देखा था, वो कैसे निकालना क्या है उसकी बात कल आएगी, तो उसका भाग देना चाहिए। तो एक प्रदेश कम करते हुए उसका भाग देते रहना चाहिए, कब तक, जब तक वो प्रदेश समूह समाप्त न हो जाए। तो ऐसा करने पर जो द्रव्य प्राप्त होता है वह विवक्षित अवधि का विषयभूत द्रव्य जानना, ये द्रव्य की बात है, अवधि का द्रव्य कितना है उसकी बात है, अवधि ज्ञान का द्रव्य कितना है उसकी बात है। अब ये एक परमाणु नहीं हो सकता और ना ही पूरा ही कारमान समूह हो सकता है, ये अपने अपने हरेक देवों के अलग अलग है, उसके लिए अपना अपना ज्ञानावरण का समूह लिया हुआ। इन गाथाओं द्वारा कहे गए समस्त अवधि क्षेत्रों का यह
कर्म का जो समुद्र है उसमें से जितना जो पहले चलता है उसका पहले टीका जो है जो बाकी रहता है
नहीं 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 वो उसकी संख्या निकालने का गणित है, गणित निकालना है तो कितने द्रव्य को जानते, क्षेत्र तो बता दिया उन्होंने, द्रव्य की बात है कितने छोटे स्कंद तक तो जानता है उसके लिए ये गणित। देखो इन गाथाओं द्वारा कहे गए समस्त अवधि क्षेत्रों का यह अर्थ यथासंभव कहना चाहिए क्योंकि अन्यथा पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग आता है। इस प्रकार जघन्य अवधि के क्षेत्र की प्ररूपणा की गई है, अभी तक तो जघन्य अवधि के क्षेत्र की प्ररूपणा चल रही थी अब जघन्य अवधि के काल की प्ररूपणा करते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था ना जघन्य अवधि का काल कितना है, वही इस प्रकार है। आवली के असंख्यात्वा भाग का आवली में भाग देने पर, हमने कहा ना आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, या आवली को जिस असंख्यात से भाग देना है वो कौन सा है, तो वो भी आवली का असंख्यात्वा भाग है। जघन्य अवधि का काल आवली के असंख्यात्व भाग मात्र होता है। हम तो कॉमन ऐसे कहें ना जघन्य अवधि का काल कितना है, आवली का असंख्यात होगा, यानी इतना ही आगे पीछे का। अभी आवली भी कितनी छोटी होती है और छोटे में छोटे अवधि ज्ञान भी इतने आगे पीछे का जानी है। इतने मात्र काल में जो कार्य हो चुका हो और जो होने वाला हो उसे जघन्य अवधि ज्ञानी जानता है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। शंका, इतना काल, इसका काल इतना मात्र ही है यह कैसे जाना जाता है, उसका समाधान। प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र व काल क्रमशः घनांगुल और आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, इस गाथा सूत्र के कथन से जाना जाता है। प्रथम कांडक में वो जघन्य की ही बात है, क्षेत्र और काल की, उसकी उससे यह बात पता चलती है। इस प्रकार जघन्य अवधि के काल की प्ररूपणा की गई। अब जघन्य अवधि के विषयभूत भाव की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है, अपना जो जाना हुआ द्रव्य है, हमने कहा अपना जाना हुआ जो जितने द्रव्य को जानते हैं, उसकी अनंत वर्तमान पर्यायों में से, अभी जो स्कंद है जो कुछ परमाणु है उसके तो अनंत पर्याय वर्तमान में, उनमें से जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा विषयीकृत आवली के असंख्यात भाग मात्र पर्याय जघन्य भाव है। कितने ही आचार्य जघन्य द्रव्य के ऊपर स्थित रूप रस गंध एवं स्पर्श आदि रूप सब पर्यायों को उक्त अवधि ज्ञान जानता है ऐसा कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता क्योंकि वे अनंत है। और उत्कृष्ट भी अवधि ज्ञान अनंत संख्या के जानने में समर्थ नहीं है, क्या बात है। अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात तक ही होता है, अनंत को नहीं। तो कितनी पर्याय हमको जानेंगे, तो ये असंख्यात, और वो भी असंख्यात कौन से वाले असंख्यात है, तो उसके लिए उन्होंने बताया ये आवली के असंख्यात वे भाग मात्र पर्याय उनके ज्ञान का विषय है, यानी असंख्यात पर्याय उनके ज्ञान में आती है। जैसे हमारे गिनी चुनी कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी आती है ना चक्षु इंद्रिय आदि अन्य अन्य इंद्रियों द्वारा, अवधि ज्ञान के द्वारा तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, उनको देखकर सुनकर सूंघकर चखकर ये नहीं जानते, कितनी ही पर्याय उनके ऐसे ज्ञान में आती है। क्योंकि आगम में वैसे उपदेश का अभाव है, बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो।